بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون. سب سے پہلے عزت ماب جناب ڈائریکٹر خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران ڈاکٹر سعید طالبی نیا صاحب اور جمہوری اسلامی ایران کے عہدیداران سپریم لیڈر اور تمام ملت ایران کو, کیونکہ یہ حادثہ ان کی سرزمین پر ہوا ہے, ان کو تعزیت بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ملت فلسطین کی خدمت میں تعزیت و تہنیت عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ پہلے میری گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیں. فارسی تو میری بہت اچھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مختصر خلاصہ پہلے جناب عالی کی گفتگو کا پیش کر دوں, پھر اپنی دو چار باتیں پیش کروں. آپ نے ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی اور فرمایا کہ اگر اسلام سے شہادت, جہاد اور حریت کو نکال دیا جائے تو وہ اسلام اسلام امریکہ ہی بن جاتا ہے, وہ خالص اسلام یا اسلام محمدی نہیں رہتا ہے. دوسرا نقطہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے ایک عزیز مہمان تھے, ایک ہمارے مہمان تھے اور ہماری سرزمین پر تشریف لائے تھے اور ایک مجاہد شخصیت تھے. ظالم صہیونی طاقتوں نے, دشمنوں نے, قاتلوں نے ان کو ہماری سرزمین پہ قتل کیا ہے. یقین رکھیں کہ جمہوری اسلامی ایران اس کا انتقام ہر صورت میں لے گا, چاہے وہ اپنی بلوں میں چھپ جائیں, ان کو نکال کے اس کا انتقام لیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہ کرے. یہ دو اہم نکات جو جناب عالی کی گفتگو میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اور بھی کافی سارے نکات تھے, میں کیونکہ فارسی میری کاملاً درست نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی وہ خطا اس میں ہو جائے, لیکن خلاصہ اس کلام کا یہی بنتا ہے. جہاں تک آج کی گفتگو کا تعلق ہے, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میرے سامنے بڑے علماء کرام, دانشور, احباب, آپ سب تشریف فرما ہیں. دو تین باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علمانہ وہ نگاہ سے پیش کی جا سکتی ہیں اس محفل میں تاکہ آگے لوگوں تک جائیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو آگے بھی سمجھ کر اس کو پہنچائیں اور اس کی پرچار کریں, کہ یہ بہت ضروری ہے. واقعاً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک المناک, تکلیف دہ اور بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو ہمارے عزیز بھائی اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ایک دہشت گردانہ کارروائی میں شہید کر دیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ عالمی صہیونزم اور استعماری طاقتوں کی, یہ وہ جو عالمی قوانین کی وہ خلاف ورزیاں ہیں جو مسلسل سالوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں, میں یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ 10 مہینے سے جو ہدف, جو ٹارگٹ, جو آبجیکٹیوس غزہ کے اندر غاصب صہیونی حکومت حاصل نہیں کر سکی, اب وہ سمجھتی ہے کہ کہیں لبنان میں, کہیں شام میں, ایران میں, عراق میں اس طرح سے اسلامی مزاحمت کے کمانڈروں کو شہید کر کے وہ اپنی کامیابی جتانا چاہتی ہے. کیا یہ کامیابی ہے؟ کسی بھی دانشور کے نزدیک کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ کسی کے دوسرے کے ملک میں جاؤ, ایک سفارتکار کو, ڈپلومیٹ کو, سرکاری مہمان کو جا کے قتل کرو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بدترین شکست ہے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی, کہ جو 7 اکتوبر کے بعد سے اس کے حصے میں دوبارہ آئی ہے. کہ غاصب ریاست کس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے؟ ایک حماس, جہاد اسلامی جو فلسطین کے اندر ہے, چھوٹا سا گروہ ہے, کوئی لاکھوں لوگ تو نہیں ہیں ان کے پاس, ٹینک تو نہیں ہیں, توپ خانے تو نہیں ہیں, جنگی جہاز تو نہیں ہیں, چھوٹا سا گروہ ہے. اس کے ساتھ لڑنے کے باوجود, پوری دنیا کی طاقت رکھنے کے باوجود, امریکہ کی سیاسی طاقت ان کے ساتھ, امریکہ کی سفارتی حمایت ان کے ساتھ, اور امریکہ کی جو ملٹری حمایت ہے وہ بھی غاصب ریاست کے ساتھ ہے, لیکن کس سے نہیں جیت سکے؟ ایک چھوٹے سے گروہ حماس سے نہیں جیت سکے. یہ شکست ہے. اور آ کر لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر کو شہید کیا, تہران میں حماس کے سربراہ کو شہید کر دیا, اسی رات وہ عراق کے اندر ہمارے جو ہمارے وہ عراقی مزاحمت کے جو لوگ ہیں ان کے 4 کمانڈروں کو شہید کیا, سیریا کے اندر کمانڈر کو شہید کیا, ایک ہمارے ایران کے فوجی ایڈوائزر بھائی کو شہید کیا. یہ شکست ہے, یہ ذلت ہے, یہ رسوائی ہے. شہادت, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شہادت کو اسلام سے نکال دو تو اسلام نہیں بچتا, تو اسماعیل ہانیہ صاحب یا دیگر ہمارے مجاہدین کمانڈرز, آپ یقین کیجئے یہ سب شہادت کے پیچھے ہیں. ہماری بھی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ خدا اگر ہمیں موت دے تو یہ شہادت کی موت دے, ना कि वो बिस्तरों पे मरें, ना कि अस्पतालों में मरें, अगर हम इस्लाम के सिपाही हैं। एक बात। दूसरी अहम बात कि दुश्मन इससे क्या चाहता था। दुश्मन ने तहरान का इंतखाब क्यों किया। जनाब इस्माइल हानिया साहब शहीद ने गुज़िश्ता 10 महीनों में दर्जनों गैर मुल्की दौरे किए, कई ममालिक के अंदर गए, क्यों शहीद नहीं किया उन्होंने। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको उर्दन, अमारात, फलां फलां जगह पे कहाँ शहीद किया जाता है, ये सवाल उठाया इन्होंने। मैं इससे आगे सवाल उठाता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि उनको तहरान में शहीद कर दिया, ये तहरान की कमज़ोरी है, फलां फलां फलां, भाई इस्माइल हानिया क्या वाइट हाउस में जाकर शहीद होते। छोड़ दें अरब मुल्कों को, शहादत की जगह यही है, क्योंकि ये मुज़ाहमत का मरकज़ है, ये इस्लामी मुज़ाहमत का कल्ब है। ईरान इस्लामी मुज़ाहमत का दारुल हुकूमत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहीद इस्माइल हानिया की बेटी कह रही है, ये उनकी बेटी के अल्फाज हैं। वो कहती हैं कि जो ईरान है इस्लामी मुज़ाहमत का कल्ब और आलम इस्लाम का दारुल हुकूमत है, तो ये फ़ख्र की बात है कि इस्माइल हानिया जैसा अजीम इंसान एक अजीम सरजमीन के ऊपर जाकर शहदा की सरजमीन पर शहीद हुआ है। तीसरी बात, दुश्मन ने चाहा कि शहीद को तहरान में कत्ल करके ईरान और हमास के ताल्लुकात के अंदर एक दरार पैदा करे। ये बातें अब छुपी हुई तो नहीं है वो किसी से, पूरी दुनिया ये जानती है कि आज अगर हमास के पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जंगी जो तजुर्बा है, ये सारे का सारा बिलाखिर इसके पीछे कोई है। 1979 तक जो जद्दोजहद थी वो किसी और तरह थी, सन 2005 तक जो हमास की जद्दोजहद थी वो किसी और तरह थी, 2005 के बाद जो हमास की जद्दोजहद है वो कुछ और है। उसमें शहीद कासिम सुलेमानी का खून शामिल है, उसमें ईरान के दर्जनों बड़े अजीम नामवर कमांडरों का खून शामिल है कि आज हमास की ताकत यहाँ तक है। ये इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, हमास और ईरान के रिश्ते को तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमास ने इस शहादत के बाद ये ऐलान कर दिया है, पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हमास और ईरान के रास्ते ना जुदा हो सकते हैं, ना कोई इसको जुदा कर सकता है। यहाँ पर भी अमेरिका को शिकस्त हुई है। इससे आगे एक और अहम बात, इस कत्ल के ज़रिए उन्होंने ये कोशिश की कि ईरानी अवाम और फ़लस्तीनी अवाम के दरमियान भी नफ़रत का बीज बोया जाए, कि फ़लस्तीनी अवाम इस्माइल हानिया की शहादत के बाद क्या करें, ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ बात करें और जो ईरानी हैं वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। नहीं, आज क्या हुआ है, 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने शहीद इस्माइल हानिया का नमाज जनाजा में शिरकत करके पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर कातिलों को यह पैगाम दिया है कि जो रिश्ते हमारे आज से पहले थे, इस शहादत के बाद हमारा रिश्ता मज़ीद तकवियत हासिल कर गया है, मज़ीद बढ़ गया है। और मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ मेरे जनाब अली कि आज के बाद मेरा यह, मुझे ये यकीन है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जितना ईरानी कौम को देखा है या वहाँ पर 2-4 दफ़ा जब गया हूँ कॉन्फ्रेंसिस में, तो मैं ये समझता हूँ कि शहीद इस्माइल हानिया ईरानी कौम के सबसे बड़े शहदा की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। शहीद इस्माइल हानिया की वो बरसी दुनिया के किसी मुल्क में मनाई जाए या ना मनाई जाए, ईरान में हर साल ज़रूर मनाई जाए। लाखों ईरानी घरों से निकलकर शहीद इस्माइल हानिया को खराज अकीदत ज़रूर पेश करेंगे। ये दुश्मन की एक और शिकस्त है। दुश्मन चाहता था दूरियां पैदा करे, लेकिन वो नाकाम हो गया है। बातें बहुत सारी हैं, आखिरी बात करके, वक्त भी कम है। एक और भी बात थी कि वो चाहते थे कि जो एक तफरका भी जो है ना वो ईजाद किया जाए, फ़लस्तीन से बाहर, ईरान और फ़लस्तीन से बाहर निकलकर क्या है, मुस्लिम दुनिया को टारगेट किया जाए कि इस शहादत के बाद उंगलियां उठने लग जाएं कहां पर, तहरान की तरफ, कि यार ये आपने क्या किया। और ये उठ रही हैं उंगलियां, बहुत से नाआकिबत अंदेश हैं, बदबख्त हैं जो इस्लाम के वो दुश्मन हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर फ़लस्तीन की हिमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा, आज सोशल मीडिया पर वो ईरान के ख़िलाफ़ दरअंदाजी कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा और आप सबका फरीदा है कि जब यहाँ से जाएं अपनी अपनी मजालिस में, अपनी महाफिल में, ये शकूक व शुबहात को क्लियर करें, आवाम को बताएं कि दुश्मन चाहता था इस कत्ल के ज़रिए, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करे, लेकिन शहीद इस्माइल हानिया के खून में ये बरकत है कि उसने हमें तफरीक होने की बजाय मज़ीद हमें मुत्तहिद कर दिया है। और आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं, मैं ख़त्म कर देता हूं, भले भले आखिरी बात करके फिर मैं दावत देता हूं उनको। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, देखिए शहीद अमाद मुगनिया रहमतुल्लाह अलैह लबनान के कमांडर हैं, जो हिजबुल्ला के हैं। ये वाक़ मैं सिर्फ आपके लिए पेश कर रहा हूँ। शहीद अम्माद कहाँ के हैं? लबनानी हैं। कहाँ शहीद होते हैं? दमिश्क में। शहीद कासिम सुलेमानी कौन है? ईरानी कमांडर है। कहाँ शहीद होता है? बगदाद में। शहीद इस्माइल हानिया कौन है? फ़लस्तीनी हैं। कहाँ शहीद होते हैं? तहरान में। ये मुज़ाहमत का पाकीज़ा खून है, ये बाबरकत खून है जो मुस्लिम सरजमीनों पर बह रहा है और मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहा है। शहीद कासिम सुलेमानी को बगदाद में कत्ल करके उन्होंने कोशिश की थी कि इराक़ और ईरान को तकसीम करें, लेकिन इराक़ और ईरान एक हो गए। आज उन्होंने कोशिश की है फ़लस्तीनियों और ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करें, लेकिन आप यकीन रखिए ये उसी तरह से इत्तेहाद आगे बढ़ेगा जिस तरह से इराक़ और ईरान का हुआ है। ये जद्दोजहद और बढ़ जाएगी, सहूनियत के ख़िलाफ़ काम तेज़ हो जाएगा, इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और जहाँ तक हमले की बात है, इन्होंने बता ही दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान हो या जो भी स्टेट होती है, वो बड़ा सोच समझ कर और बड़ा सारे जो सिक्वेंस होते हैं उसको देख कर हमला किया जाता है। हमारी ख्वाहिशात पर, हमारी तो ख्वाहिश है कि अभी हो जाए, लेकिन हमारी ख्वाहिशात पर पूरी दुनिया नहीं चलती। लेकिन हमें सब्र करना चाहिए और सब्र के साथ इन हालात को देखना चाहिए, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह गासिब से उनी रियासत को ठीक जवाब मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है इंशाअल्लाह। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और बग़ैर ताखीर के जनाब अली ने हुक्म दिया है कि मैं इनकी बिहाफ़ पर जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर मोहतरम ये मुस्लिम परवेज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं।